श्यामली का दिल अब तक सीने में थरथरा रहा था। आर्यन की बाहों की गर्मी, उसका पागलपन और उसकी आंखों की नमी, सब कुछ अब भी उसकी रगों में गूंज रहा था। वो जैसे ही कमरे में अकेली रह गई और विश्वनाथ को वहां आते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ बार बार पल्लू को कसकर सीने पर टिकाते जा रहे थे। मन ही मन वो बुदबुदाई, हे भगवान, अगर इन्हें जरा भी शक हो गया तो मैं तो सचमुच खत्म हो जाऊंगी। ये रिश्ता वैसे ही नाजुक है, और अगर उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। विश्वनाथ कुर्सी पर बैठ गया था, एक पैर घुटने पर टिकाए सामने फाइल खोले। उसकी निगाहें शब्दों पर थीं, मगर कमरे की हर हलचल वो महसूस कर रहा था। श्यामली समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब तो मुझे और ज्यादा पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा ताकि इन्हें कोई शक ना हो। अगर इन्हें आर्यन के बारे में जरा भी पता चला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे विश्वनाथ के पास गई। उसके जूते अभी पैरों में थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें छूने की कोशिश की, उंगलियां जैसे बर्फ हो गई थीं। विश्वनाथ के पैरों के पास बैठते ही उसके सीने में डर और तेज हो गया। भगवान, मेरी मदद करना, इन्हें कुछ ना पता चले। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर जूते की लेस पकड़ने की कोशिश की, विश्वनाथ ने अचानक फाइल से नजरें हटाए बिना ही रूखे अंदाज में कहा, विश्वनाथ, गहरी ठंडी आवाज में, ये सब करने की जरूरत नहीं है। श्यामली जैसे बिजली के झटके से कांप उठी, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा, मगर विश्वनाथ अब भी फाइल पर झुका था। विश्वनाथ रूखेपन से हल्की तिरस्कार भरी हंसी के साथ, ये काम पत्नी के होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं, समझी? श्यामली का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, उसके मन में हलचल मच गई। मैं तो अपने डर से इन्हें और परखवा बैठी, अगर अब ये गुस्से में कुछ और कह देंगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। विश्वनाथ ने फाइल का एक पन्ना पलटा, अपनी कोहनी आर्मरेस्ट पर टिकाई और थोड़ी झुकी आवाज में जोड़ा, विश्वनाथ, इस मजबूरी के रिश्ते को ना खुद पर थोपो ना मुझ पर, आराम से रहो, जितना निभा सकती हो निभाओ, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी समझूंगा। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना कोई भाव, सिर्फ ठंडापन, ऐसा ठंडापन जो खून जमा दे। श्यामली वहीं नीचे घुटनों के बल बैठी रह गई। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुका लिया ताकि आंसू बहकर दिख ना जाए। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी, काश आर्यन कभी मेरी जिंदगी में ना आया होता, काश मैं इन हालातों में ना फंसी होती। एक तरफ उसका पागलपन, दूसरी तरफ इनकी बेरुखी, मैं कहाँ जाऊं? कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया, सिर्फ कागजों की सरसराहट और श्यामली की टोटी सांसें सुनाई दे रही थीं। विश्वनाथ ने धीरे धीरे फाइल बंद की, मेज पर रखी और पीछे टिककर आंखें मूंद ली, मगर श्यामली को उसकी खामोशी भी एक कसक, एक डर की तरह लग रही थी। वो चुपचाप उठी, आंखें बोझी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। हर कदम जैसे उसके सीने पर बोझ डाल रहा था। पीछे से विश्वनाथ की वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, श्यामली, याद रखना, यहां सबको अपने अपने हिस्से का बोझ ढोना है, कोई किसी को बचा नहीं सकता। उसके शब्दों ने जैसे श्यामली के दिल पर पत्थर रख दिया। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। उसकी आंखों से आंसू ठलक गए। पल्लू से चेहरा ढककर वो लंबी सांस लेती हुई गलियारे से आगे बढ़ गई। कमरे के भीतर विश्वनाथ फिर फाइल पलटने में जुट गया। चेहरे पर वही रूखापन, न कोई पछतावा, न कोई कोमलता, बस एक अडिग दीवार जिससे टकराकर श्यामली का दिल बार बार चूर हो रहा था। श्यामली दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक रुक गई। उसका दिल भारी हो गया था। उसने पलटकर विश्वनाथ की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहा, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको अपना पति मानती हूँ, भले ही ये रिश्ता मजबूरी में बना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे निभाने की। उसके शब्दों में दर्द और सच्चाई थी, लेकिन जैसे ही ये बात उसके होठों से निकली, विश्वनाथ की आंखें अचानक भड़क उठीं। वो धीरे धीरे उठकर उसके पास आया। उसकी चाल में ठंडापन था, लेकिन आंखों में गुस्सा और तिरस्कार की चिंगारी जल रही थी। बिना कुछ सोचे उसने श्यामली की बाजू कसकर पकड़ ली। पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्यामली दर्द से कराह उठी। विश्वनाथ, गहरी कठोर आवाज में, बहुत सुना है ये सब, बहुत, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है, समझी, बोझ। उसकी उंगलियों के पकड़ श्यामली की नाजुक बाहों पर गहरी पड़ती जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। श्यामली, दर्द से कांपते स्वर में, आह, छोड़ दीजिए प्लीज। विश्वनाथ ने झटके से उसकी बाह छोड़ दी। श्यामली पीछे लड़खड़ा गई और पल्लू कसकर सीने पर टिकाते हुए खड़ी रह गई। विश्वनाथ की सांसें तेज थीं। कुछ पल तक उसकी आंखें श्यामली पर खड़ी रहीं, फिर उसने नजरें फेर ली। बिना और कुछ कहे उसने अलमारी से फाइल उठाई और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जैसे ही धड़ाम से बंद हुआ, कमरे में गहरा सन्नाटा भर गया। श्यामली वहीं खड़ी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कांपते होंठ बस इतना बुदबुदा पाए। श्यामली, टूटे स्वर में, मैंने तो बस निभाने की कोशिश की थी। उसकी रुलाई पूरे कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। बाहर हवेली की खामोशी और गहरी हो चुकी थी। श्यामली आंसू पोंछने की कोशिश करती रही, मगर उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा, वहां पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। उस निशान को सहलाते हुए उसकी रुलाई और तेज हो गई। वो बिस्तर के कोने पर बैठ गई, चेहरा घुटनों में छिपा लिया और सुबकती रही। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मेरी कोई जगह नहीं इस घर में? क्या मैं सिर्फ बोझ हूँ? चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी, मगर उसके आंसुओं की चमक को और गहरा बना रही थी।